నమో అరిహంతాణం, నమో సిద్ధాణం, నమో ఆయిరియాణం, నమో ఉజ్జాయాణం, నమో లోయే సౌసాణం. జలో పంచ పరమేష్టి భగవాన్ కీ జయ. అయోధ్యా శాశ్వత తీర్థ క్షేత్ర కీ జయ. పరమ పూజ్య గణిని ప్రముఖ శ్రీ జ్ఞానమతి మాతాజీ కీ జయ. అభ్యాత్మాఓ, క్లాస్ కా సమయ హో గ్యా హై. ఆప్ సభీ సమయ సే ఉపస్థిత హోకర్ కి ఔర్ గోమఠ సార్ జీవ కాండ ఔర్ సంస్కృత వ్యాకరణ కా అధ్యయన్ కర్నే జా రహే హై. ధ్యాన్ రఖే, 5 మార్చ్ కో ఆప్ సబ్కి గోమఠ సార్ జీవ కాండ కి పరీక్షా హోనీ హై వేద మార్గణా తక్ और 87 गाथाओं की परीक्षा होने वाली है. उसमें सर्वप्रथम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपकी ये लघु परीक्षा लेकर के पुनः हम आगे का विषय प्रारंभ करते हैं. चलिएगा, जो लोग उपस्थित हैं प्रश्न को सुन करके जिन्हें सही उत्तर आता हो हैंड रेज करेंगे और किसी एक से उत्तर पूछा जाएगा. बताएंगे 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं. हम कहते हैं 84 लाख योनियों में यह जीव परिभ्रमण करता है अनादिकाल से. उन 84 लाख योनियों के नाम बताने हैं आपको, कौन कौन सी हैं. जिन्हें उत्तर आता हो हैंड रेज करेंगे. देखो बहन जी कौन कर रहे हैं, लीसा काले. चलिए इनको स्पॉटलाइट करें. लीसा जी बताइए 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं. गिनती करते जाइए. आपने बताया पृथ्वी का 1,07,000, जल का 1,07,000, अग्नि का 1,07,000, वायु का 1,07,000, तो 7×4=28,00,000 हो गई. उसके बाद
2 इंद्रिय 2,00,000, 3 इंद्रिय 2,00,000, चतुर इंद्रिय 2,00,000,
6,00,000 और 28 और 6 34,00,000 हो गई. संगी पंचेंद्री
मनुष्य तो 14 लाख होती है. वनस्पति
इसको न कर, ये आवाज न खोलो, मतलब जोर से ना. अच्छा हाँ
हाँ, वनस्पति का है 7,00,000, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्थेंद्रिय पंचेंद्रिय संजीव और यह हो गई अपनी 2,00,000 और देव और नारकी 7,00,000.
पारस चैनल, पारस चैनल और जूम चैनल दोनों ही चालू हैं. आपके द्वारा बताया गया उत्तर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं. किसी और ने हैंड रेज किया हो तो उनको स्पॉटलाइट करें. अभी दीप्ति जी आप बताइए, अनम्यूट करें.
नित्य निगुण, इतर निगुण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन प्रत्येक की 7,00,000, वनस्पति की 10,00,000, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्द्रिय इनमें से प्रत्येक की 2-2,00,000, देव नारकी पंचेंद्रिय त्रियंच प्रत्येक की 4-4,00,000, मनुष्य की 14,00,000, सब मिलाकर 84 लाख योनियां होती हैं.
लोग हैंड रेज, सब लोग क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं. दीप्ति जी ने बहुत एकदम एप्रोप्रिएट उत्तर बताया है. आपने पहले वाली बहन जी ने नित्य निगोद इतर निगोद को छोड़ दिया था, तो नित्य निगोद इतर निगोद पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक इनकी 7-7,00,000, तो तो छह की साथ सात लाख योनियां हुई, तो सात छंग 42 लाख ये पहले हो गई। उसके बाद सब लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। पुनः वनस्पति काय की 10 लाख, तो 42 और 10 52 हो गए, 52। और उसके बाद में 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री इनकी प्रत्येक की 2-2 लाख, तो 6 लाख हो गए। 52 और 6 कितने हो गए? 58 लाख। उसके बाद देव नारकी और पंचेंद्री त्रियंज की 4-4 लाख, तो 12 लाख ये हो गई। 58 और 12 70 लाख हो गई। और उसके बाद मनुष्यों की 14 लाख, तो 70 और 14 मिलकर के 84 लाख योनियां। क्योंकि ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी 84 लाख योनियों में हम सब ने अनादिकाल से परिभ्रमण किया है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद दीप्ति जी के लिए, इसी प्रकार से अध्ययन करना है सबको। और एक अब अगला ये बताना है, मार्गणा कितनी होती हैं और उनमें से पंचेंद्री जीव की कौन सी मार्गणा है, कौन सी गति मानी जाती है, मार्गणाएं कितनी हैं और पंचेंद्री जीव की कौन सी गति है। चलिए हैंड रेज कीजिएगा जिनको आता हो, मार्गणा के भेद और पंचेंद्री जीव की कौन सी गति, यानी वे कौन सी गति में होते हैं, उत्तर बताना है। हैंड रेज देखो कितने हैं, किसने है? शशि जी, शशि जी ने हाथ उठाया है। चलिए
माता जी, मार्गणा 14 होती है और पंचेंद्रिय जीव तिर्यंच में भी रहता है, देवगति में और मनुष्य गति में।
पंचेंद्रिय जीव नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देवगति, पांचों ही चारों ही गतियों में पंचेंद्रिय जीव होते हैं और मार्गणाएं 14 होती हैं। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है। देखो प्रश्न एक होता है, उत्तर कोई एक देता है लेकिन अनेक लोग उस उत्तर से लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार से आपको थोड़ी सी तैयारी कर करके और 5 तारीख को परीक्षा में सम्मिलित होना है। अब हम आगे के क्लास में चलते हैं, वेद मार्गणा चल रही है। तो मंगलाचरण के साथ गोमटसार जीवकांड का प्रारंभीकरण। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणदयम जीवस्य पर्वणम मोक्षम। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में 10वीं प्ररूपणा चल रही है वेद मार्गणा। उसमें आपने वेद के लक्षण को जाना कि वेद नाम वेद कर्म के उदय से भाव वेद बनता है और अंगोपांग निर्माण नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद माने शरीर के अंगों का आकार बनता है। और वे वेद 3 प्रकार के होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो इनमें भाव वेद और द्रव्य वेद लगभग लगभग एक समान होते हैं। जिनके द्रव्य वेद जो होता है वह भाव वेद, लेकिन कहीं कहीं विषमता भी होती है। उन विषमताओं में ध्यान देना है कि विषमता केवल कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में ही होती है, भोग भूमि में विषमता नहीं होती। माने जो द्रव्य भेद वहां होता है वही भाव भेद होता है। देवताओं में, नारकियों में, इनमें कोई विषमता नहीं होती है, समानता ही रहती है। तो ये बात आपने 83 नंबर की गाथा के द्वारा जाना है। अब 84 नंबर की गाथा में चलते हैं, पुरुष वेद का स्वरूप। पुरु गुण भोगे से दे,
पुरु गुण भोगे से दे,
करे दिलो यम्मी पुरु गुणम कमम,
करे दिलो यम्मी पुरु गुणम कमम,
पुरु उत्तमो यजम्हा,
पुरु उत्तमो यजम्हा,
तम्मासो वन्नियो पुरिसो,
तम्मासो वन्नियो पुरिसो।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा।
पुरु गुण भोगे से दे, करे दिलो यम्मी पुरु गुणम कमम, पुरु उत्तमो यजम्हा, तम्हासो वर्णियो पुरिसो।
पुरुगुण भोगेश इति करोति लोके पुरुगुणं कर्म, पुरुरुत्तमश्च यस्मात् तस्मात् स वर्णितः पुरुषः। गाथा के माध्यम से व्युत्पत्ति अर्थ बताया है, निरुक्ति अर्थ, पुरु प्लस स इन इस अर्थ को बताया। पुरु माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, पुरु गुण भोगे सीधे, जो उत्कृष्ट गुणों को भोगते हुए जो उसके स्वामी होते हैं। करेदि लोयम में पुरु गुणम कम्मम, और लोक में पुरु गुणम माने उत्कृष्ट गुण युक्त जो कर्म को करते हैं। यानी पुरुष की परिभाषा बहुत ही सुंदर दी है पुरु प्लस सा को, कि जो उत्कृष्ट गुणों को का सेवन करते हैं और उत्कृष्ट गुण युक्त कर्मों को करके। पुरु उत्तमो या जम्मा, और जो स्वयं में उत्तम होते हैं, यानी उत्तम उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट परिणामों से सहित होते हैं। तम्मा सो वर्ण्यो पुरुषो, इसलिए उनको पुरुष कहा है। यानी पुरुष जो बनने वाले हैं और जो पुरुष बन जाते हैं उनके उत्कृष्ट गुणों के कारण, क्योंकि यदि मोक्ष भी प्राप्त होता है तो पुरुष वेद से मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर उत्कृष्ट गुणों के स्वामी पुरुष को बताया गया है। व्युत्पत्ति अर्थ है, पुरुष जघन्य भी हो सकते हैं, पुरुष ज्यादा से ज्यादा पाप भी कर सकते हैं, पुरुष अधिक से अधिक पुण्य को करके मोक्ष तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान आदि गुणों के स्वामी होने के कारण इंद्र चक्रवर्ती आदि उत्कृष्ट पदों को प्राप्त करने के कारण, चारों पुरुषार्थों का उत्कृष्ट रूप से सेवन करने के कारण, और सबसे उत्कृष्ट जो है परमेष्ठी पद, परम पद में स्थित एक पुरुष वेदी ही होता है, इसलिए पांचों परमेष्ठी पुरुष वेदी कहलाते हैं, इसलिए पुरुष संज्ञा उनको प्राप्त है। देखो, जो प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर आत्मा होती है उसको भी पुरुष शब्द से संबोधित किया जाता है। वैसे आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, लेकिन आत्मा उत्कृष्ट गुणों का स्वामी होता है, आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकारी होता है, इसलिए निरुक्ति अर्थ के अनुसार पुरुष वेद का लक्षण बताया है। और वैसे पुरुष वेद कर्म के उदय से पुरुष पर्याय मिलती है द्रव्य से, और अंगोपांग निर्माण नाम कर्म का जब उदय होता है तो द्रव्य से पुरुष वेद का आकार बनता है। तो जो कुछ भी है पुरुष वेदी का लक्षण बता करके ये बताना है कि संसार के अंदर पुरुष वेद को, पुरुष वेद वाले को 14 के 14 गुण स्थान प्राप्त करने का अधिकार होता है। वर्तमान में पुरुष वेदी को 7 गुण स्थान तक माना गया है, क्योंकि मुनि की पर्याय यानी मुनि दीक्षा जो ली जाती है तो 6ठे और 7वें गुण स्थान में उनका स्थान होता है। और उत्कृष्ट रूप में जानना है, जब कोई भव्य पुरुष, भव्य आत्मा मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है और जिस समय उसके 28 मूल गुणों के संस्कार होते हैं तो सर्वप्रथम उनका गुण स्थान बनता है 7वां, समझे ना। चतुर्थ गुण स्थान से 7वां गुण स्थान बनता है, पहले 6ठा नहीं, पहले 7वां गुण स्थान बनता है, क्योंकि उस समय दीक्षा के परिणाम एकदम उत्कृष्ट परिणाम होते हैं, तब वह 7वें गुण स्थान के भावों को प्राप्त करता है। पुनः 7वें गुण स्थान का काल चूंकि अंतर मुहूर्त है तो 7वें से 6ठे में और 6ठे से 7वें में पूरे जीवन काल के अंदर उसको परिवर्तन करना होता है। तो 6ठे और 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं। आज पंचम काल के अंदर चूंकि हीन संगणन है इसलिए आगे 8वें आदि गुण स्थानों में उनका गमन नहीं होता है, लेकिन 6ठा 7वां गुण स्थान भी कम नहीं होता है। कहने में आपको लगेगा कि 6ठी 7वीं क्लास जैसा, लेकिन 6ठे 7वें गुण स्थान में भी जाना आज की पर्याय के अनुसार निष्णात होना है, इसलिए एक बात आई कि वरिष सहस सेण पुरा जम कम्मम हणई तेण कायण तम कम्मम वरिषेण हु निचर्य हीन संहरणे। प्रश्न होता है कि आज के मुनिराज जो इतनी कठिन तपस्या करते हैं, आज पंचम काल के अंदर मोक्ष नहीं है, तो भी कहा गया कि जो जो तपस्या 1000 साल करके कर्मों का नाश करने वाली होती है, उत्तम संगणनधारी मुनिराजों के लिए, वह आज पंचम काल के हीन संगणन से युक्त होकर तपस्या करने से 1 वर्ष में उतने कर्मों का नाश किया जा सकता है। यह आपको विशेष फैसिलिटी दी गई है, विशेष छूट दी गई है। यह छूट इसलिए दी गई है कि पंचम काल के शरीर से हीन संगणन से तपस्या चतुर्थ काल की ही है। तो इसलिए जैसे कोई बच्चा हेलीकॉप्टर चला ले, हवाई जहाज चला ले, तो उसका नाम गिनीज बुक के अंदर आ जाता है। ऐसे तो जो निष्णात हो जाते वो करते ही हैं, लेकिन अनमेच्योर अवस्था में यदि कोई विशेष योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसका नाम विशेष हो जाता है। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने हमें छूट प्रदान की कि आपको घबराना नहीं है। पंचम काल के हीन शरीर से, हीन संगणन से भी यदि आपने व्रतों को धारण किया है, मुनि आरिका व्रतों को धारण किया है, छुल्लक छुल्लिका बने हैं, चतुर्थ संग में जो पिच्छीधारी होते हैं मुनि आरिका छुल्लक छुल्लिका, अनादिकाल से ये 4 लिंग मयूर पंख की पिच्छिका से समन्वित रहे हैं और गुणस्थानों की अपेक्षा भेद होता है। मुनिराजों की 6ठा 7वां गुणस्थान होता है, आरिकाओं की 5वां गुणस्थान की उत्कृष्ट अवस्था होती है, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं के अलग के इनके भी 5वां गुणस्थान उनके भावों के अनुसार तरतमता से पाया जाता है। तो ये हमने आज प्रसंग के अनुसार पुरुष वेद के लक्षण के अंदर बताया कि द्रव्य से पुरुष वेदी ही भावलिंगी मुनिराज बन सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको श्रद्धान करना है और उत्कृष्ट गुणों को प्राप्त करने के कारण पुरुष वेद प्रकट होता है। ये आज की स्वाध्याय का सार समझना है।